رسولوں کے اعمال باب ایک۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا،
یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔
بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا،
آئے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟
اس نے ان سے کہا،
ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔
یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو، دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے،
اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔
تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یروشلیم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمون زلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے، اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا،
اے بھائیوں، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔
اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلیم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دما پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت،
کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ بس جتنے عرصے تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔
پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوسطس ہے، دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی،
اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔
پھر انہوں نے ان کے بارے میں خرا ڈالا، اور خرا متیا کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ رسولوں کے اعمال باب 2۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई जबाने दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग फेरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे,
देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कुपुदुकिया और पुंतुस और आसिया और फरोगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करेने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जबान में उनके खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं।
और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे,
ये क्या हुआ चाहता है?
और बाद में छटका करके कहा
कि ये तो ताजा मैं के नशे में है।
लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा,
ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुड्ढे ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, बेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। ऐ इसराइलियों, ये बातें सुनो कि येसु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजिजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाची तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्मे साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश ना हो, इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुँचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, उसने पेशिनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी येसु को खुदा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है, खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना या कहीं जान ले कि खुदा ने उसी येसु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावन भी किया और मसीह भी।
जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा,
ए भाइयों, हम क्या करें?
पतरस ने उनसे कहा,
तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा।
और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की,
अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ।
बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे और अपनी जायदाद और अजबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो नजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। रसूलों के आमाल बाब 3। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा,
हमारी तरफ देख।
वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा,
चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदे की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा,
ऐ इसराइलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इजाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातूस ने उसको छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कुदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। इसके हम गवाह हैं, उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। और अब है भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जबानी पेश सर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचे मूसा ने कहा, कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि समवेल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे, खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से फेर कर बरकत दे।
रसूलों के आमाल बाब 4। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तैदाद 5,000 के करीब हो गई। दूसरे दिन ये हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हो गए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे,
तुमने यह काम किस कुदरत और किस नाम से किया?
उस वक्त पतरस ने रूहुल कुदस से मामूर होकर उनसे कहा,
ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बासपोर्स की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया,
फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं,
और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे
कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें,
क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरी मौजज़ा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें।
बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा,
तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने?
क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें।
उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका न मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर यह शिफा देने का मुजजा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से कहा,
अए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूल कुछ के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जबानी फरमाया के कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए, खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत में जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजिज़े और अजीब काम जहूर में आए।
जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था क्योंकि उनमें कोई भी मुहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। रसूलों के आमाल बाब 5। और एक शख्स हनीनिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा,
ऐ हनन्या, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला।
ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा,
मुझे बता दो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी?
उसने कहा,
हाँ इतने ही को।
पतरस ने उससे कहा,
तुमने क्यों खुदावन की रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे।
वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदावंत की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदुकियों के फिरके के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा,
जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ।
वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन पियादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में ना पाया और लौटकर खबर दी।
हमने कैद खाने को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला।
जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए।
इसका क्या अंजाम होगा?
इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी,
देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं।
तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हम कुछ संसार ना करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा,
हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो।
पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा,
आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था, उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूहुल कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं।
वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उनसे कहा,
ऐ इसराइलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इस मुनवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मغلوب ना कर सकोगे।
उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। रसूलों के आमाल बाब 6। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगीरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा,
मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें।
पास है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे।
ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्तिफनुस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहल खुद से भरा हुआ था, और फिलिपुस और पुरखुरुस और नेकानोर और तेमोन और परमनास को और निकोलाउस को जो नौमरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया, और इन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी ग्रुह इस दीन के तहत में हो गई, और स्तिफनुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाने से जो लिबतीनों का कहलाता है और कुरुनियों और इस्कंदरियों और उनमें से जो किलकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्तिफनुस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया,
हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफ्र की बातें करते सुना।
फिर वो आवाम और बुजुर्गों और फकीहों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़ कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा,
यह शख्स इस पाक मुकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने इसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं।
और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। रसूलों के आमाल बाब 7। फिर सरदार काहिन ने कहा,
क्या ये बातें इसी तरह पर हैं?
उसने कहा,
आए भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वायदा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा, हालांकि उसके औलाद ना थी। और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी, वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतने का अहद बांधा और इसी हालत में अब्राहम से इजहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इजहाक से याकूब और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फिराउन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था, लेकिन याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुनबे को जो 75 जाने थी बुला भेजा और याकूब मिस्र में गया, वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए और वो सहरे सिकम में पहुँचाए गए और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिकम में रुपए देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया उस वक्त तक कि दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को न जानता था। उसने हमारी कौम से चलाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा ना रहें। इस मौके पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था, वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिराउन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनांचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से दो लड़ते हुओं के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया और वहाँ उसके दो बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कुहे सीना के बयाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारे से ताज्जुब किया और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इजहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुरात ना रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है और उनका आह ओ नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, जिस मूसा का उन्होंने यह कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजिम और बयाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बयाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कुहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमा बरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। पस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि ऐ इसराइल के घराने, क्या तुमने बयाबान में 40 बरस मुझको जबीहें और कुर्बानियां गुजरानी? बल्कि तुम मोलक के खेमे और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन सूरतों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खेमा बयाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। उसी खेमे को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यीशु के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मिल्कियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया और वो दाऊद के जमाने तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरख्वास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्किन तैयार करूं, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔
جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا،
دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔
مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا،
اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔
پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا،
اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا،
اور یہ کہہ کر سو گیا۔ رسولوں کے اعمال باب 8۔ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیا اور سامریا کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا، اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بال اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے شمون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریا کے لوگوں کو حیران رکھتا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے،
یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔
وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پترس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا،
مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔
پترس نے اس سے کہا،
تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تُو نے خدا کے بخشیش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है।
शमौन ने जवाब में कहा,
तुम मेरे लिए खुदावंद से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश न आए।
फिर वो गवाही देकर और खुदावंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरिया के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा,
उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गज़ा को जाती है और जंगल में है।
वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा,
नजदीक जाकर उस रथ के साथ बोले।
बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा,
जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है।
उसने कहा,
यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे।
और उसने फिलिप्पुस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताबे मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी,
लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और जिस तरह वर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्थाली में उसका इंसाफ न हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है।
खोजे ने फिलिप्पुस से कहा,
मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के।
फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। खोजे ने कहा,
देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है।
बस फिलिप्पुस ने कहा,
अगर तू दिलो जान से मान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है।
उसने जवाब में कहा,
मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है।
बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। रसूलों के आमाल बाब 9। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए खा मर्द खा औरत उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकाएक आसमान से एक नूर उसके गिर्दागिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी,
साउल ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है।
उसने पूछा,
ऐ खुदावंद तू कौन है।
उसने कहा,
मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा।
जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदावन ने रोया में कहा,
ऐ हननिया।
उसने कहा,
आए खुदावन मैं हाजिर हूँ।
खुदावन ने उससे कहा,
उठ उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो।
हनन्याह ने जवाब दिया,
आए खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले।
मगर खुदावन ने उससे कहा,
तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा।
बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा,
आए भाई साउल, खुदावन यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिसे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूल कुछ से भर जाए।
और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाए, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा,
वो खुदा का बेटा है।
और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे,
क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए।
लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई, और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे, लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि यह शागिर्द है। मगर बन्नबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह से राह में खुदावंत को देखा, और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम से मनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दिलेरी के साथ खुदावन के नाम की मनादी करता था, और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगु और बहस भी करता था। मगर वो उसे मार डालने के दर पे थे, और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसुस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चयन हो गया, और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंत के खौफ और रूहुल खुद की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां अमीनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा,
अनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा।
और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बालाखाने में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की,
हमारे पास आने में देर न कर।
पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाने में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा,
आए तबीता, उठ।
बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमोन नाम दब्बाक के हाँ रहा। रसूलों के आमाल बाब 10। कैसरिया में कुर्नुलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो इतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है,
कुर्नेलियस।
उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा,
खुदावन क्या है?
उसने उससे कहा,
तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाक के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुन्दर के किनारे है।
और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई,
ऐ पतरस उठ, ज़िबा कर और खा।
मगर पतरस ने कहा,
ऐ खुदावन हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई।
फिर दूसरी बार उसे आवाज आई,
जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम न कह।
तीन बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुर्नुलियस ने भेजा था शमोन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे,
शमाउन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है?
जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा,
देख तीन आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है।
पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा,
देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो?
उन्होंने कहा,
कर्नेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने।
बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुर्नुलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुर्नुलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा,
खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ,
और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा,
तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ, इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज्र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है?
कुर्नुलियस ने कहा,
इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, तो देखो एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि आए कुरनेलियुस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुन्दर के किनारे शमाउन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने।
पतरस ने जुबान खोल कर कहा,
अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मारिफत, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसाह किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा।
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मफ्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया,
क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया?
और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे। रसूलों के आमाल बाब 11। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे
कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया।
पतरस ने शुरू से वो अम्र तरतीब वार उनसे बयान किया।
मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतर कर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकौड़े और हवा के परिंदे देखे, और ये आवाज भी सुनी, अय पतरस उठ ज़बह कर और खा। लेकिन मैंने कहा, ऐ खुदावन, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम न कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गईं, और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए, उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्तों को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था, और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता।
वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे,
फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है।
बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो इस्तिफनुस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए, उनमें से एक ने जिसका नाम अगबुस था खड़े होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा, और ये कलुदियुस के अहद में वाक़े हुआ। पस शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। रसूलों के आमाल बाब 12। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि यह बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा। इस इरादे से के फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा,
जल्द उठ।
और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ीं। फिर फरिश्ते ने उससे कहा,
कमर बांध और अपनी जूती पहन ले।
उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा,
अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले।
वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हलके में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है, वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया, और पतरस ने होश में आकर कहा,
अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया,
और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़ कर अंदर खबर की।
पतरस फाटक पर खड़ा है।
उन्होंने उससे कहा,
तू दीवानी है।
लेकिन वो यकीन से कहती रही
के यूं ही है।
उन्होंने कहा,
उसका फरिश्ता होगा।
मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदावन ने मुझे इस तरह कैदखाने से निकाला। फिर कहा,
याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना।
और रवाना होकर दूसरी जगह पर चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस को क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वो सूर और सैदा के लोगों से निहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजी बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदेस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्त अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे,
ये तो खुदा की आवाज है ना के इंसान की।
उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। रसूलों के अमाल बाप 13। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमोन जो काला कहलाता है और लूकियस क्रेनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम यरूदेस के साथ पला था और साउल जब वो खुदावंत की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल को उसने कहा,
मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है।
तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल खुद के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहाँ से जहाज पर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुँच कर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे और यूहन्ना उनका खादिम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरेसु नाम मिला। वो सर्गियुस पौलुस सुबेदार के साथ था जो साहेब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर इलीमास जादूगर ने, कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल खुद से भर कर उस पर गौर से नजर की और कहा,
ऐ इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंत की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंत का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा।
उसी दम कुहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा के कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देख कर और खुदावंत की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन इबादत खाने में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा,
ए भाइयो, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो।
बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा,
ऐ इसराइलियों और ऐ खुदा तरसो सुनो, इस उम्मत इसराइल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेशियों की तरह रहती थी उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया, और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मीरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुअल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स साउल कीस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया, फिर उसे मजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वायदे के मुआफिक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे की मनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। आए भाइयों, अब्राहम के फर्जंदों और आए खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सब को सुनाई जाती है, इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया। और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरखास्त की, और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको उस वादे के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया। चुनांचे दूसरे मजबूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनांचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने न देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस आए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। बस खबरदार, ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि आए तहकीर करने वालों देखो, ताजुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाने में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे।
उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सप्त को भी ये बातें हमें सुनाई जाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौमरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सप्त को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफ्र बकने लगे। پولس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے،
ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔
غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا، اور پولس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکونیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے مامور ہوتے رہے۔ رسولوں کے اعمال باب 14۔ اور اکونیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ پس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا، لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے، بعض رسولوں کی طرف۔ مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھائے، تو وہ اس سے واقف ہو کر لکاونیا کے شہروں لسترا اور دربے اور ان کے گرد نواح میں بھاگ گئے، اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا،
اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔
بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر لکاونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا،
آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں۔
اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولس کو ہرمیس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا۔ اور زیوس کے اس مندر کے پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ جب برنباس اور پولس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے،
لوگو تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا، چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔
یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں، مگر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا، اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے،
ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔
اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پستیا میں سے ہوتے ہوئے پمفولیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیا کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیا میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ رسولوں کے اعمال باب 15۔ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے،
اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔
پس جب پولوس اور برنباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برنباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر خاموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فینیکے اور سامریا سے گزرے، اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعد نے اٹھ کر کہا،
ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔
پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور بہت بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا،
اے بھائیوں، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداون یسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔
پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا،
اے بھائیو میری سنو، شماؤن نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، کیونکہ قدیم زمانے سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سب کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔
اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولوس اور برنباس کے ساتھ انطاکیا کو بھیجیں، یعنی یہودا کو جو برسبا کہلاتا ہے، اور سیلاس کو، یہ شخص بھائیوں میں مقدم تھے، اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا،
انتاکیہ اور سوریا اور کلکیہ کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے۔ چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا، اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض چنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عزیزوں برنباس اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجے۔ یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہودا اور سیلاس کو بھیجا ہے، وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے، کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ والسلام۔
بس وہ رخصت ہو کر انتاکیہ میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا۔ وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے، اور یہودا اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا۔ وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے، لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا۔ مگر پولس اور برنباس انتاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے۔ چند روز بعد پولس نے برنباس سے کہا،
جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔
اور برنباس کی صلاح تھی،
یوحنا کو جو مرکوس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔
مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفولیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنباس مرخص کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا۔ مگر پولس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا۔ رسولوں کے اعمال باب 16۔ پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکونیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نوا میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے، اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ بس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ بس وہ موسیا سے گزر کر تراؤس میں آئے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے،
پار اتر کر مقدونیا میں آ اور ہماری مدد کر۔
اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ پس تروآس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیا پولیس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ اور تھواتھیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام خرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا،
اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔
بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غائب دان روح تھی۔ وہ غائب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی،
یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔
وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا،
میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔
وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا،
اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔
اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور داروغا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا،
اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔
وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا،
آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟
انہوں نے کہا،
خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔
اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا،
ان آدمیوں کو چھوڑ دے۔
اور داروغہ نے پولوس کو اس بات کی خبر دی،
فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔
مگر پولوس نے ان سے کہا،
انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔
حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے، اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ بس وہ قید خانے سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ رسولوں کے اعمال باب 17۔ پھر وہ امفیپلس اور اپلونیا ہو کر تھسلونیکے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، اور پولس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی، اور اس کی معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا،
اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔
ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں۔ مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے، اور یاسون کا گھر گھیر کر उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा, और जब उन्हें ना पाया तो यासोन और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए।
वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने हाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु।
ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बैरिया में भेज दिया, और वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बैरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमोथियस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तीमोथियस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथेने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इपकोरी और स्टोइकी फैलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा,
ये बकवासी क्या कहना चाहता है?
औरों ने कहा,
ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है,
इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और कहा,
आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है?
क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है, बस हम जानना चाहते हैं इनसे गर्ज क्या है।
इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा,
आए अथेने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, चुनांचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादे और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे शायद के टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और इजाज़ से गढ़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तोबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मारिफत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है।
जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बास ठट्टा मारने लगे, और बास ने कहा,
ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे।
इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए اور ایمان لائے، ان میں دیونسیوس، اریوپگس کا ایک حاکم اور دمریس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ رسولوں کے اعمال باب 18۔ ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پنتس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیا سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا،
تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔
بس وہاں سے چلا گیا، اور تیتوس یوسطس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانے سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانے کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا،
خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔
پس وہ ڈیڑھ برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ جب گلیو اخیا کا صوبے دار تھا، یہودی ایکا کر کے پولس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے،
یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔
جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا،
اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔
اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانے کے سردار سوستھنیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیوں نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ بس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخیریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے، اور افسوس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصے ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا،
اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا۔
اور افسوس سے جہاز پر روانہ ہوا، پھر قیصریہ میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقے اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پھر اپولوس نام ایک یہودی اسکندریا کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسوس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا، اور یسوع کی بابت صحیح صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے، اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے، تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو علانیہ قائل کرتا رہا۔ رسولوں کے اعمال باب 19۔ جب اپولوس کرنتیس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا،
کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟
انہوں نے اس سے کہا،
ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔
اس نے کہا،
پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟
انہوں نے کہا،
یوحنا کا بپتسمہ۔
پولوس نے کہا،
یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسو پر ایمان لانا۔
انہوں نے یہ سن کر خداوند یسو کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس تعریف کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسو کا نام یہ کہہ کر پھونکے،
جس یسو کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔
اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا،
یسو کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟
اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسوس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسو کے نام کی بزرگی ہوئی، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتےروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا،
وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔
پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور اراستوس کو مقدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصے آسیا میں رہا۔ اس وقت اس تاریخ کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دیموتریس نام ایک سنار تھا جو ارتیمس کے روپ پہلے مندر بنوا کر اس پیشے والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا،
اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔
وہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے،
افسیوں کی ارتمس بڑی ہے،
اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگوں نے گیوس اور ارسترخوس کہ دنیا والوں کو جو پولس کے ہم سفر سے پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پولس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے پاس دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی ضرورت نہ کرنا، اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے،
کرسیوں کی ارتمیس بڑی ہے۔
پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا،
اے افسیوں، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمیس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی؟ پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کے لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے۔ بس اگر دیمتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبیدار موجود ہے، ایک دوسرے پر نالش کریں، اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی نہ کر سکیں گے، یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا۔ رسولوں کے اعمال باب 20۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا، اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیا ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا، اور تھسلونیکیوں میں سے ارسترخس اور سیکندس اور گیوس جو دربے کا تھا، اور تیموتھیوس اور آسیا کا توخیکس اور ترفیموس آسیا تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر تروآس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد تروآس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں 3rd منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا،
گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔
پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پاؤں پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا، اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے، اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ پس جب وہ اسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر متلونے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن فیوس کے سامنے پہنچے، اور 3rd دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن ملیتوس میں آئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسوس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو اسے پنتیکست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے ملیتوس سے افسوس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا،
تم خود جانتے ہو
کے پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلے اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلے بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا، تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔
اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے، پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ رسولوں کے اعمال باب 21۔ اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودس میں اور وہاں سے پترا میں، پھر ایک جہاز سیدھا فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کپروس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلیم میں قدم نہ رکھنا، اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے، اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر قیصریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی، اور جب ہم وہاں بہت روز رہے तो अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा,
रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाले करेंगे।
जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया,
तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ।
जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए,
खुदावंद की मर्जी पूरी हो।
उन दिनों के बाद हम अपने सफर का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बाद शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ ले आए ताकि हम उसके यहाँ मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सिल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की, फिर उससे कहा,
अरे भाई तू देखता है कि यहूदियों में हजारहा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ चार आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर ताकि वो सर मुंडवाएं तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असली नहीं बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है, मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घोटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें।
इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर ना चढ़ाई जाए तकद्दस के दिन पूरे करेंगे। जब वो सात दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया,
अरे इज़राइलियों मदद करो, ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है,
क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुरफिमुस इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसकी बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए और पौलुस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पौलुस की मारपीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और दो जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, पर जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त ना कर सका तो हुक्म दिया कि उसे किले में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, और जब पौलुस को किले के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा,
क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूँ?
उसने कहा,
क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4,000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया?
पौलुस ने कहा,
मैं यहूदी आदमी किलकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाज़त दे।
जब उसने उसे इजाज़त दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जुबान में यूं कहने लगा, रसूलों के आमाल बाब 22।
अरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ।
जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी जुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा,
मैं यहूदी हूँ और किलकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनांचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर मसीह तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनांचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहाँ हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, अय साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया, अय खुदावन तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, अरे खुदावंद मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हनन्या नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस राजबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, अरे खुदावंद वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था और जब तेरे शहीद स्टेफनुस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहाँ खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा।
वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए,
ऐसे शख्स को जमीन पर से पना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं।
जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और हाथ उड़ाते थे تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولس نے اس صوبے دار سے جو پاس کھڑا تھا کہا،
کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟
صوبے دار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا،
تو کیا کرتا ہے، یہ تو رومی آدمی ہے۔
پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا،
مجھے بتا تو کیا تو رومی ہے؟
اس نے کہا،
ہاں۔
پلٹن کے سردار نے جواب دیا،
میں نے بڑی رقم دے کے رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔
پولس نے کہا،
میں تو پیدائشی ہوں۔
بس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے۔ صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رسولوں کے اعمال باب 23۔ پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا،
اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔
سردار کائن ہننیا نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا،
اس کے منہ پر تماچا مارو۔
پولس نے اس سے کہا،
اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟
جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا،
کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟
پولس نے کہا،
اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے۔
جب پولس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا،
اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔
جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑا شور ہوا، اور فریسیوں کے فرقے کے بعض فقیہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے،
ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے، اور اگر کسی روح یا فرشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟
اور جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پولس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعے میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا،
خاطر جمع رکھ، جیسے تو نے میری بابت یروشلیم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔
جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا،
جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں، نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔
اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ بس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا،
ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائیں، گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو، اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔
لیکن پولس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعے میں جا کر پولس کو خبر دی۔ پولس نے صوبے داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا،
اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔
بس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا،
پولس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تو اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔
پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا،
مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟
اس نے کہا،
यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरख्वास्त करें कि कल पौलुस को सदरे अदालत में लाएं, गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है, लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डालें, ना खाएंगे ना पिएंगे, और अब वो तैयार है, सिर्फ तेरे वायदे का इंतजार है।
पर सरदार ने जवान को ये हुक्म देकर रुख्सत किया,
किसी से ना कहना कि तूने मुझ पर ये जाहिर किया,
और 2 सूबेदारों को पास बुलाकर कहा,
200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेजा बरदार पहर रात गए कैसरिया जाने को तैयार रखना।
और हुक्म दिया,
पौलुस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाजिर करें, ताकि उसे फेलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचा दें।
और इस मजमून का खत लिखा,
क्लॉडियस रुसियास का फेलिक्स बहादुर हाकिम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रोमी है तो फौज समेत चढ़ गया और उसे छुड़ा लाया, और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं, उसे उनकी सदरे अदालत में ले गया, और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया कि कत्ल या कैद के लायक हो, और जब मुझे इत्तला हुई कि इस शख्स के बरखिलाफ साजिश होने वाली है, तो मैंने इसे फौरन तेरे पास भेज दिया और इसके मुदईयों को भी हुक्म दे दिया कि तेरे सामने इस पर दावा करें।
पर सिपाहियों ने हुक्म के मुआफिक पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपतरिस में पहुंचा दिया, और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप फिले को फिरे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को खत दे दिया और पौलुस को भी उसके आगे हाजिर किया। उसने खत पढ़कर पूछा,
ये किस सूबे का है,
और ये मालूम करके कि किलकिया का है, उससे कहा,
जब तेरे मुद्दई भी हाजिर होंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा,
और उसे हेरोदेस के किले में कैद रखने का हुक्म दिया। रसूलों के आमाल बाब 24। 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहिन 5 बुजुर्गों और तिरतलुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया, और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतलुस इल्जाम लगाकर कहने लगा,
ऐ फेलिक्स बहादुर, क्योंकि तेरे वसीले से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूरंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इसलाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपनी मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिद्दती फिरके का सरगिरह पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा, और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफिक इसकी अदालत करें, लेकिन लूसियस सरदार आकर बड़ी जबरदस्ती से इसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुदईयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं। इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्जाम लगाते हैं।
और यहूदियों ने भी इस दावे में मुत्तफिक होकर कहा कि ये बातें इसी तरह हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया,
चूंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातिर जमई से अपना उज्र बयान करता हूँ। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था, और उन्होंने मुझे न हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, ना इबादत खानों में ना शहर में, और ना वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्जाम लगाते हैं तेरे सामने साबित कर सकते हैं। लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तारीख को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरेत और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतजर है कि राजबाजों और नारास्तों दोनों की कयामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुँचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बगैर हंगामा या बलवे के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया। हाँ, आसिया के चंद यहूदी थे और अगर उनका मुझ पर कुछ दावा था तो उन्हें तेरे सामने हाजिर होकर फरियाद करना वाजिब था। या यही खुद कहे कि जब मैं सदर अदालत के सामने खड़ा था तो मुझ में क्या बुराई पाई थी सिवा इस एक बात के कि मैंने उनमें खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा था कि मुर्दों की कयामत के बारे में आज मुझ पर तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है।
फेलिक्स ने जो सही तौर पर इस तरीके से वाकिफ था यह कहकर मुकदमे को मुलतवी कर दिया और कहा,
जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो मैं तुम्हारा मुकदमा फैसल करूंगा।
और सूबेदार को हुक्म दिया कि इसको कैद तो रख मगर आराम से रखना और इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मना ना करना। और चंद रोज के बाद फेलिक्स अपनी बीवी दरुसिल्ला को जो यहूदी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फेलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया,
इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा।
उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी इसलिए उसे और भी बुला बुलाकर उसके साथ गुफ्तगु किया करता था। लेकिन जब दो बरस गुजर गए तो पुरकिस फिस्तुस फेलिक्स की जगह मुकर्रर हुआ और फेलिक्स यहूदियों को अपना एहसान मंद करने की गरज से पौलुस को कैद ही में छोड़ गया। रसूलों के आमाल बाब 25। बस फिस्तुस सूबे में दाखिल होकर तीन रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे और घात में थे कि उसे राह में मार डालें। मगर फिस्तुस ने जवाब दिया,
पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहाँ जाऊँगा, बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चले और अगर इस शख्स में कुछ भेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें।
वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्त अदालत पर बैठकर पौलुस को लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे मगर उनको साबित ना कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज्र किया,
मैंने तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का ना कैसर का।
मगर फिस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसान मंद बनाने की गरज से पौलुस को जवाब दिया,
क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहाँ मेरे सामने फैसल हो।
पौलुस ने कहा,
मैं कैसर के तख्त अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यही फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनांचे तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूँ या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ।
फिर फिस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया,
तूने कैसर के यहाँ अपील की है तो कैसर ही के पास जाएगा।
और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिपा बादशाह और बिन्निके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से मुलाकात की और उनके कुछ अरसे वहाँ रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से यह कहकर बयान किया,
एक शख्स को फिलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کہ مدعی عالیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعوے کا جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی، بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا۔ مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولوس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا، کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیصر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے۔
اگریپا نے فیستوس سے کہا،
میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا،
تو کل سن لے گا۔
بس دوسرے دن جب اگریپا اور بننے کے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو فیستوس کے حکم سے پولوس حاضر کیا گیا۔ پھر فیستوس نے کہا،
آئے اگریپا بادشاہ اور آئے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار اعلیٰ کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگریپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔
رسولوں کے اعمال باب 26۔ اگریپا نے پولس سے کہا،
تجھے اپنے لیے بولنے کی اجازت ہے۔
پولس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا،
اے اگریپا بادشاہ، جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں، خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور مسلوں سے واقف ہے۔ بس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے۔ سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے۔ چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں، اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقے کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور اب اس وعدے کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا۔ اسی وعدے کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے 12 کے 12 قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی امید کے سبب سے آئے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے، تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے، چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا۔ تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जबान में यह आवाज सुनी कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है, पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा अरे खुदावंद तू कौन है? खुदावंद ने फरमाया मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीजों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूँगा और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मीरास पाए। इसलिए अय अग्रिप्पा बादशाह मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ बल्कि पहले दमिश्कियों को फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तोबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तोबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशीन गोई नबियों और मूसा ने भी की है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा।
जब वो इस तरह जवाबदेही कर रहा था तो फिस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा
अरे पौलुस तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है।
पौलुस ने कहा
अरे फिस्तुस बहादुर मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ, चुनांचे बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ ये बातें जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। अरे अग्रिप्पा बादशाह क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ कि तू यकीन करता है।
अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा
तू तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है।
पौलुस ने कहा
मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं सिवा इन जंजीरों के।
तब बादशाह और हाकिम और बिन्निके और उनके हमनशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे
ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो।
अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा
अगर ये आदमी कैसर के हाँ पील ला करता तो छूट सकता था।
रसूलों के आमाल बाब 27। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाला किया और हम और मुतेम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थिसलुनिके का अरिस्तर्खुस मिगदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रुस की आड़ में होकर चले इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किल्किया और पंफुलिया के समुन्दर से गुजरकर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बैठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से किंदुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी सलमोने के सामने से होकर कुरेते की आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मुकाम में पहुंचे जिससे लस्या शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था। तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर नसीहत की,
ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी।
मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया, और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हो और अगर हो सके तो फीनिक्स में पहुँच कर जाड़ा काटे। वो क्रेते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक को है। जब कुछ कुछ दक्षिणा हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ कर के हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और क्रेते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकुलून कहलाती है क्रेते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए, और जब मल्ला उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा, और सूरतीस के चूर बालू में धस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक न सूरज नजर आया न तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा,
अरे साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर कुरेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, अरे पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी थी, इसलिए अरे साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े।
जब 14वीं रात हुई और हम बहरे औरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए, और पानी की तह लेकर 20 पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पुरसा पाया, और इस डर से कि मबादा चट्टानों पर जा पड़े जहाज के पीछे से चार लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाने से कि गलही से लंगर डालें डोंगी को समंदर में उतारा, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा,
अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते।
इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया, और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की के खाना खा लो, और कहा,
तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी काना होगा।
ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा, फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। जब वो खाकर सैर हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था, और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज को उस पर चढ़ा ले। वापस लंगर खोलकर समंदर में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा के रुख पर चढ़ाकर उस किनारे की तरफ चले, लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समुद्र का जोर था और जहाज जमीन पर टिक गया। बस गल ही तो धक्का खाकर फंस गई, मगर दम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा और सिपाहियों की यह सलाह थी कि कैदियों को मार डालें कि ऐसा ना हो कोई तैर कर भाग जाए, लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गरज से उनको इस इरादे से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएं, और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। रसूलों के आमाल बाब 28। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मेह की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे,
बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समुद्र से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता।
बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर एकाएक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा,
ये तो कोई देवता है।
वहां से करीब पुबलियोस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पुबलियोस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम इस्कंद्रिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान डिस्कोरी था, और सुरकुसा में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फेर खाकर रिगुयम में आए और एक रोज बाद दक्षिणा चली तो दूसरे दिन पुतेली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर इपुतिस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा,
अरे भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था, मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्जाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद की सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं।
उन्होंने उससे कहा,
ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरके की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं।
और वो उससे 1 दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा, और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए।
रूल कुछ ने यशाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा के इस उम्मत के पास जाकर कहे कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाए और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस नजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगी।
जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए, और वो पूरे दो बरस अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता और वो खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।